उर्वशी का काव्य सौंदर्य। भारतीय साहित्य में काव्य पुरुष की कल्पना अत्यंत प्राचीन है। इसी आधार पर काव्य संगठन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आत्मा और शरीर। काव्य शास्त्र की भाषा में इन्हें क्रमशः भाव पक्ष और कला पक्ष कहते हैं। भाव पक्ष का संबंध काव्य की वस्तु से है और कला पक्ष का उसके आकार से। जिस प्रकार वस्तु और आकार का टूट संबंध है, उसी प्रकार भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों परस्पर इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शरीर के अभाव में आत्मा की और आत्मा के अभाव में शरीर की कल्पना निराधार है, उसी प्रकार भाव पक्ष के अभाव में कला पक्ष की और कला पक्ष के अभाव में भाव पक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। इन दोनों का पार्थक्य केवल अध्ययन की सुविधा के लिए स्वीकार किया गया है, अन्यथा किसी काव्य की गरिमा इन दोनों के समुचित समन्वय में ही निहित होती है। भाव पक्ष का विवेचन। भाव पक्ष का संबंध काव्य के वर्ण विषय से है, अतः इसका विवेचन करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, भाव और रस। इन दोनों का ही परस्पर अटूट संबंध है। भाव के बिना रस की और रस के बिना भाव की कोई सत्ता नहीं होती। इसीलिए आचार्य भरत ने कहा है, न भावहीनो अस्ति रसो न भावो रसवर्जितः। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाव उन विकारों का समूह है जो भाव बाह्य जगत के संवेदनों से मनुष्य के हृदय में उठते हैं, किंतु साहित्य के भाव मनोविज्ञान के भाव से भिन्न होते हैं। अतः साहित्य में मनोविज्ञान की परिभाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। साहित्य के भाव मन के वे विकार हैं जिनमें सुख दुखात्मक अनुभव के साथ कुछ क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रहती है। दूसरे शब्दों में भाव का अभिप्राय काव्य के वर्ण विषय कथा वस्तु से है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। यह आनंद लौकिक आनंद से भिन्न होता है। इसीलिए काव्य के द्वारा प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा कर्मचारी भाव। रस के नौ भेद हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। आजकल वात्सल्य और भक्ति को मिलाकर रसों की संख्या 11 मानी जाती है। कला पक्ष का विवेचन। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने की मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसे एक प्रकार का आनंद और संतोष मिलता है। यही कारण है कि वह भिन्न भिन्न उपकरणों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। जिस प्रकार मूर्तिकार को मूर्ति को सुंदर गढ़ने के लिए अनेक औजारों की और संगीतकार को सुंदर संगीत के लिए अनेक वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्यकार को अपनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए भाषा के अनेक तत्वों की संयोजना करनी पड़ती है। भाषा के यही तत्व कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अलंकार, भाषा, शब्द शक्ति, गुण, रीत, वृत्ति, छंद आदि कला पक्ष के तत्व हैं। उर्वशी का भाव पक्ष। उर्वशी का वर्ण विषय अथवा कथावस्तु राजा पुरूर्वा उर्वशी का प्रेमाख्यान है। यह आख्यान जितना प्राचीन है भारतीय वांग्मय के लिए उतना ही परिचित और ग्राह्य है। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक यह आख्यान जनमानस को छूता चला आ रहा है। इस आख्यान का उद्देश्य मानव मन की सर्वप्रमुख समस्या काम का प्रस्तुतिकरण और उसका समाधान है। काम मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, किंतु केवल सहजता का ग्रहण मनुष्य का शोचनीय नहीं, क्योंकि फिर मनुष्य या पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसा कि कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य का धर्म है पार्श्विकता से ऊपर उठना और अपनी सहज प्रवृत्तियों पर मानवोचित उदात्तीकरण की छाप लगा देना। उर्वशी में ही बताया गया है कि काम का उदात्त रूप जो तन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है, मनुष्य को ग्राह्य है। इसी से उसके जीवन में प्रगति के शत सहस्र निर्झर फूटते हैं। उर्वशी का अंगी रस श्रृंगार रस है। इस रस में अन्य रसों की अपेक्षा अधिक व्यापकता होती है, इसीलिए इसे रसराज स्वीकार किया गया है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इन्हें क्रमशः संयोग और विप्रलम्ब भी कहते हैं। संयोग में नायक नायिका एक साथ रहकर आनंद की उपलब्धि करते हैं, वियोग में वे दोनों बिछुड़ जाते हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार के चार भेद होते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। पूर्वराग का अभिप्राय है रूप सौंदर्य आदि के श्रवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक नायिका की उस दशा का जो उनके समागम से पूर्व हुआ करती है। मान का अर्थ है कोप या प्रणय कोप। इसे आचार्यों ने विशुद्ध विप्रलम्ब नहीं माना। इसमें नायक नायिका परस्पर चाहे न बोलें किंतु एक दूसरे के पास तो रहते हैं, इसलिए इसमें विरह की पूर्वानुभूति नहीं होती। प्रवास में नायक नायिका किसी कारण से विदेश चले जाते हैं और इस प्रकार एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। करुण विप्रलम्ब श्रृंगार का वह प्रकार है जिसे प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक के दिवंगत हो जाने किंतु पुनरुज्जीवित हो सकने की अवस्था में जीवित बचे दूसरे के हृदय के शोक संवलित रति भाव का ही व्यंजक कहा गया है। उर्वशी में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष दिखलाए गए हैं। उर्वशी को महाराज पुरुरवा एक राक्षस से बचा लेते हैं। उर्वशी उनके शौर्य और रूप को देखकर उन पर मुग्ध हो जाती है। महाराज स्वर्गलोक से अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर को चले जाते हैं। उर्वशी उनके विरह में इतनी व्याकुल हो जाती है कि स्वर्ग का समूचा वैभव उसे नीरस और जी घोट प्रतीत होने लगता है। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है। और महाराज पुरुरवा ही उर्वशी के लिए कम व्याकुल नहीं है। मेरे अश्रु ओस बनकर कल्पद्रुम पर छाएंगे। इसके पश्चात उर्वशी और महाराज पुरुरवा का मिलन हो जाता है। मिलन सुख से महाराज पुरुरवा इतने आनंदित हैं कि अपने असीम आनंद को व्यक्त ही नहीं कर पाते। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल का आनंद में। उर्वशी भी इसी प्रकार अपने आनंद की अभिव्यक्ति करती है। जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को। इस प्रकार उर्वशी और पुरुरवा दोनों के माध्यम से कवि ने श्रृंगार रस की योजना की है, किंतु यह योजना स्वाभाविक कम और चिंतनपूर्ण अधिक है। पुरुरवा और उर्वशी के काम विषयक तार्किक भावधाराओं में मिलन सुख पूर्णतया बिखर जाता है। अतः कह सकते हैं कि इन दोनों के श्रृंगार वर्णन में स्वाभाविकता नहीं जो अपेक्षित थी। कवि जब चिंतन और दर्शन की भाषाएं बोलता है तब स्वाभाविकता अक्षुण्ण बनी नहीं रहा करती। हाँ, औशिनरी की विरह व्यथा अपेक्षाकृत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। इसका कारण यही है कि कवि ने उसे अपने चिंतन का माध्यम नहीं बनाया। और औशिनरी के ये शब्द कितने मार्मिक और प्रभावक हैं। पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी। कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को चलने दे। जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। श्रृंगार रस के अतिरिक्त वीर और शांत रस के प्रसंग में उर्वशी में परिलक्षित होते हैं, किंतु उनमें ही अपेक्षित विवेचन का अभाव है। उर्वशी का कलापक्ष। कलापक्ष के अंतर्गत विशेषतः अलंकार योजना और भाषा संगठन का विवेचन होता है। अलंकार योजना मनुष्य की सौंदर्योपासक दृष्टि की परिचायिका है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः सौंदर्योपासक प्राणी है। वह अपने चतुर्दिक के वातावरण को सौंदर्य से मंडित देखना चाहता है। उसकी यह इच्छा बाह्य जगत तक ही सीमित नहीं है, वरन आंतरिक जगत को भी वह सौंदर्यान्वित देखने का इच्छुक है। इसी इच्छा के वशीभूत होकर वह सौंदर्य का आदान प्रदान करता है। वाणी के विधान में भी उसकी यही इच्छा कर्मशील है। वह चाहता है कि वह जो कुछ भी कहे सुने अथवा लिखे वह भी सौंदर्य विहीन न हो जाए। इसीलिए काव्यों में अलंकारों की योजना की गई है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार, अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात भूषित अथवा अलंकृत करने के साधन को अलंकार कहते हैं। सामान्यतः अलंकारों के तीन भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्द को चमत्कृत करने वाले शब्दाश्रित अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थ को चमत्कृत करने वाले अर्थाश्रित अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं। और शब्द तथा दोनों अर्थ दोनों को चमत्कृत करने वाले तथा दोनों में आश्रित रहने वाले अलंकार उभय अलंकार होते हैं। उर्वशी में अलंकार योजना स्वाभाविक और अर्थवर्धक है। कवि का कहीं भी अलंकारों के प्रति अनावश्यक मोह दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसीलिए इसमें अर्थालंकारों का ही अधिक है। व्याख्या भाग में सभी अलंकारों का निर्देश यथास्थान कर दिया गया है, तथा उन्हें दोहराना अनुचित प्रतीत होता है। उर्वशी की भाषा अत्यंत प्रौढ़ और भावानुसारणी है, जो भावों को अपने अबाध प्रवाह में सर्वत्र प्रवाहित कर रही है। इसीलिए उर्वशी में अनेक पंक्तियां सूक्ति बन रही गई हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि उर्वशी का काव्य सौंदर्य कवि की सफलता की महती उद्घोषणा है। यद्यपि इसमें काव्य शास्त्रीय नियमों का पूर्ण प्रयोग नहीं मिलता, तथापि अपने क्षेत्र में जो कुछ भी कहा गया है वह श्लाघ्य है। इस काव्य में भाव और कला दोनों का समुचित समन्वय हुआ है, बल्कि दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हुए से प्रतीत होते हैं। किसी महान कवि अथवा उत्तम काव्य की सफलता भी यही है। समाप्त।